अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाळुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय
अम्बे
जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय माता जय माता जय माता जय जय माता जय माता जय माता जय जय माता जय माता जय माता जय माता जय जय माता जय
माता जय
दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय
हे
जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे
जगज्जननी अम्बे माता की सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घर घटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद के ये क्षण और इन क्षणों की वृद्धि करता हुआ नौ संवत्सर आज हम लोग नौ संवत्सर विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य के नाम से जो संवत्सर चलता है वर्ष संवत्सर का मतलब पूर्ण एक वर्ष की जो परिक्रमा है तो ये जो नौ संवत्सर 2073 और जो महाराष्ट्र में चलता है शक संवत साके जिसको बोलते हैं शक संवत 1938 आज से 2073 विक्रमी संवत और शक संवत 1938 आज से प्रारंभ हो रहा है यानी हमारे आपके जीवन से एक वर्ष कम हो रहा इसकी आपको बधाई दी जाए या दुख मनाया जाए है ना। तो बड़ा विचित्र ये काल का क्रम है जो एक एक वर्ष करके हमारे जीवन से पृथ्वी के द्वारा की हुई सूर्य की परिक्रमा के संग संग हमारे जीवन से कम होता रहता है यानी हमारी आयु दिन प्रतिदिन एक एक क्षण क्षीण होती जा रही है इसीलिए ये सब चीजें याद दिलाने के लिए बनाई गई। तो आज जो है नौ संवत्सर का प्रारंभ हमारे यहां माता भगवती की आराधना से ये सब जो है प्रारंभ होता है और जो हमारी चार नवरात्र हैं अश्विन मास चैत्र मास और अषाढ़ मास माघ मास तो सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष की जो है शुभकामनाएं साधुवाद और परमेश्वर की कृपा का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे ऐसी इच्छा जो भी हमारे जो इस हाल में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको भी और जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे सत्संग को नित्य प्रति सुनते हैं क्योंकि यहां तो जो संख्या दिखाई दे रही है उससे कई गुना ज्यादा संख्या इंटरनेट पे सत्संग को सुनती है लगभग 2000 लोग रोज। तो आप ये पूरे विश्व में 2000 लोग इस सत्संग को नित्य प्रति सुनते हैं तो यहां पर समझ लीजिए आप कितने श्रोता हैं आपके संग संग 2000 लोग और पूरे विश्व में जो है इस स्थान का फायदा उठाते हैं महापुरुषों का है प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के तप को नमस्कार करना पड़ेगा महाराज जिन्होंने 6-6 महीने दो लोग तीन लोग होते थे महाराज और 6-6 महीने लगातार उन दो दो तीन तीन लोगों से इस स्थान को जागृत किया और ये जो है आज प्रेमपुरी मंडल जो है बिल्कुल विशेष सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ आपको यहां पर रात्रि तक महाराज 9:30 बजे तक कोई ना कोई किसी ना किसी जो है कार्यक्रम के रूप में किसी ना किसी जो है वृत्ति के रूप में आपको जितनी भी गतिविधियां यहां चलती हैं उसके माध्यम से हर प्रकार से शारीरिक भी मानसिक भी और आपके दुख दर्द के निवारण के लिए भी सब हर प्रकार की व्यवस्था ऐसा ये कल्प वृक्ष जिसको कहना चाहिए। तो स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज पूज्य चरण जिन्होंने जो है इस कल्प वृक्ष की नींव रखी संकल्प के द्वारा और उस संकल्प को पूरा किया पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद जी ने और बाकी तो महाराज आगे सब लोगों ने हमारे हरि भाई जो स्वयं स्वामी श्री अखंडानंद जी के संग लगे रहे उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है महाराज जो पुरुषार्थ उन्होंने किया हरि भाई ने एक एक जो है इंच जिसको कहते हैं आगे बढ़ाना इस स्थान को तो दो लोगों का विशेष पुरुषार्थ इस स्थान के संग हमारे पूज्य हरि भाई और जो है अखंडानंद जी महाराज तो दोनों को बारंबार एक बार पुनः इस नव संवत्सर पे याद करते हुए कि ऐसे महापुरुषों की कृपा हमारे ऊपर अनवरत बनी रहे और हम इसी प्रकार से सत्संग का लाभ लेते रहें तो बारंबार इनकी आशीर्वाद की चाहना परमेश्वर के आशीर्वाद की चाहना माता भगवती के आशीर्वाद की चाहना करते हुए इस नौ संवत्सर का जो है माता भगवती के जो है स्तुति और तत्पश्चात उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी क्योंकि हमारे यहां जो चार नवरात्र हैं दो प्रगट और दो गुप्त दो प्रगट नवरात्र अश्विन मास और चैत्र मास ये दो प्रगट नवरात्र हैं जिनको सब लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं और ये चारों नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रथम नौ तिथियां जो हमारे यहां दो पक्ष हैं कृष्ण पक्ष अमावस्या को समाप्त होता है कल जैसे समाप्त हुआ और एक एक दिन चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्णिमा को प्राप्त होगा उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो जो उजियारा पाक और अंधेरा पाक यानी अंधेरा और उजाला दो पक्ष माने गए चंद्रमा की गतियों के, तो प्रथम जो शुक्ल पक्ष की नौ तिथियां हैं अश्विन मास की, चैत्र मास की जो आज प्रारंभ हो रही है वो अषाढ़ मास जो वर्षा काल में आता है और माघ मास जो शरद ऋतु में आता है, तो ये शुक्ल पक्ष के अषाढ़ और माघ मास गुप्त जो माता भगवती के विशेष भक्त हैं गुप्त रूप से माता भगवती की आराधना करते हैं, तो ये विधान है देखिए कि भगवान प्रकट भी है और गुप्त भी है, यही एक परमेश्वर की विशेषता है, वो सर्व प्रकट होते हुए भी गुप्त है। इसीलिए नवरात्र तो प्रकट है ही, माता भगवती सब लोग उपासना कर सकते हैं, लेकिन विशेष जो है गुप्त नवरात्र बनाए गए जो पता भी नहीं चलते कब आए और कब चले गए, जो विशेष माता के भक्त हैं या जो विशेष तिथियों का ध्यान देते हैं उन्हीं को समय पर याद आता है कि इस समय जो है गुप्त नवरात्रि व्यतीत हो रही है और वो लोग आराधना करते हैं। तो ये चार नवरात्र, चैत्र मास का नवरात्र जो आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, नौ संवत्सर के संग होता है और दोनों के संग भगवान श्री राम जुड़े हैं, ये भी विशेषता है। अश्विन मास में जो है भगवान श्री राम ने जो है विजय प्राप्त की थी रावण के ऊपर, विजयदशमी मनाते हैं हम लोग उस समय, और इस समय जो है नवरात्र के अंत में भगवान श्री राम का क्या होता है अवतरण दिवस, यानी जो हम लोग जन्म मनाते हैं भगवान श्री राम का। तो दोनों नवरात्रों के संग माता भगवती के संग श्री राम जुड़े हुए हैं महाराज। तो माता भगवती आद्याशक्ति जगत जननी महामाया, जो भी नाम आप कहें, क्योंकि जो कुछ भी कार्य है सब माया का है, महामाया का ही ये सारा कार्य है और महामाया के द्वारा ही संचालित है, इसीलिए वो आद्याशक्ति हैं, जगत जननी हैं और महामाया हैं, तीनों नाम उनके हैं। तो आइए सबसे पहले तो जो है दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माता भगवती के जो है सप्तश्लोकी भागवत के माध्यम से उनको याद करें, उसके बाद माता भगवती के जो अष्टोत्तर सतनाम हैं 108 नामों से माता भगवती को जो गाया गया है भगवान दुर्गा माता के अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करेंगे, उसके बाद माता भगवती की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा, सात श्लोकों में जो है माता भगवती दुर्गा का जो है आनंद लीजिए, उनको याद कीजिए और अपने अंतःकरण में माता भगवती जगत जननी का जो है चिंतन करते हुए अपने इस नौ संवत्सर को हम लोग प्रारंभ करें। भगवान शिव जो है पूछ रहे हैं स्वयं माता भगवती से और माता भगवती उसका उत्तर दे रही हैं कि सप्त श्लोकों में जो मेरा पाठ नित्य प्रति करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और उसके लिए मैं सर्वसुलभ हो जाती हूं। शिव उवाच, देवी तम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। दिव्युवाच, शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहाप्तं वाय स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भी तिमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यशदार्दचित्ता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषा
न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलानवेष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्ण। तत्पश्चात माता भगवती के श्री दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्त्रोत्र का हम लोग माता भगवती के 108 नामों का जाप भी हो जाएगा और हृदय में माता के संपूर्ण रूप जो हैं वो आपके चित्रित होंगे इसका पाठ करते हुए। तो आइए प्रेम से जो है माता भगवती की 108 नाम की माला करें। ईश्वर उवाच सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु सुकमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति ओम सती साद्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेता शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिरंकारा चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति सांभवी देवमाता चा चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णकवर्णा चा पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कमल मंजीर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंब शुंब हननी महिषासुर मर्दनी मधुकैटव हंत्री चा चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा चा सर्वादानव घातिनी शास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता चा अनेकास्त्रस्य धारणी कुमारी चैक कन्या चा कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा चा वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तनि नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली चा अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नाशाद्यं विदते देवी त्रिशुलोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् पर्या भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवैरपि राजानो दाशतां यान्ति राजश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालतककुंकुमेन सिन्दूरकर्पूरमधोत्रयेण विलेख्ययन्त्रम् विधिना विधिज्ञो भवे सदाधा रयते पुरारी भौमावश्यानि सामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपटेत सोत्रम सा भवे संपदां पदम इति श्री विश्वसारतंत्रे श्री दुर्गाष्टोत्तर सतनाम स्त्रोत्रम समाप्त श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो माता भगवती के ये सतनाम और सप्तश्लोकी दुर्गा जो माता भगवती को समझने के लिए पर्याप्त है, और जो सबसे बड़ी विशेषता है इस महामाया के स्वरूप के वर्णन की, सतनाम के पाठ में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीजें माता भगवती के हर स्वरूप, महाघोर भी वही है, महासुंदरी त्रिपुर सुंदरी भी वही है, और क्या नाम उसका महा जो है वृद्ध परम वृद्ध जिनको कहा गया महाराज कहते हैं वृद्ध माता, तो वृद्ध माता भी हैं और कुमारी भी हैं, कुमारी मतलब बिल्कुल जिसको षोडश वर्षीय कहते हैं, कुमारी भी हैं और वृद्ध माता भी हैं। तो ऐसा जो ये विपरीत स्वरूप का जो माता का स्वरूप दर्शाया गया, इसीलिए महामाया, महामाया जिनको समझना बड़ा कठिन ही नहीं है, बिल्कुल असंभव है ना। स्वयं भगवान शंकराचार्य भाष्यकार ने स्वयं कह दिया कि माया जो है क्या है, अनिर्वचनीय। माया को क्या कह दिया उन्होंने, इसकी कोई विवेचना नहीं हो सकती। महाराज किसी ने पूछा उनसे कि सृष्टि कब हुई, बोले ये तो बिल्कुल अभी संभव नहीं क्योंकि अनंत है। सृष्टि कैसी है, क्योंकि जब से परमेश्वर है तब से सृष्टि है ना। तो जब से परमेश्वर है तब से सृष्टि है, तो जैसे परमेश्वर अनंत है वैसे सृष्टि भी क्या हो गई। हाँ, तो इसका ये पता लगाना सृष्टि कब हुई कब समाप्त होगी बिल्कुल भी संभव नहीं। तो महामाया जो है अनिर्वचनीय है, इनकी व्याख्या संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम इनके गुणों को देखें तो जो सप्तश्लोकी दुर्गा में महाराज एक बड़ी जोरदार बात बताई गई पहले श्लोक में कि जिस समय मेधातिथि ने जो है समाधि वैश्य और राजा सुरथ को परिचय दिया, उन्होंने पूछा ये महामाया कौन है, तो उन्होंने परिचय दिया ज्ञान इनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। किसको महामाया कहते हैं, कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानवानों की है? चेतना का बलात् है ना, नहीं चाहते हुए भी महाराज सब तपस्या करने के लिए विश्वामित्र जी जंगल में गए महाराज, और 10,000 वर्षों तक तप करते रहे। कितने, हाँ 10,000 वर्षों तक महाराज घनघोर तप किया, लेकिन ये महामाया का प्रभाव है बलात् आकृष्य मोहाय। कहते हैं ना चाहते वे भी शक्ति से महाराज वो महामाया बुद्धि का हरण कर लेती है, और उसकी बुद्धि को बड़े बड़े ज्ञानियों की चेतान से बुद्धि को महाराज चेतना को मोह में डाल देती है, और 10,000 वर्षों के तपस्वी विश्वामित्र को महाराज मेनका के ऊपर आकर्षित होने में कितनी देर लगी, एक सेकेंड, एक क्षण में 10,000 वर्षों का जो तप था वो क्या हो गया, मोह में परिणित हो गया हमारा। एक साधारण सी चीज ये कहते हैं हरण कर लेना। ज्ञान इनाम अपि चेतांसि, साधारण की तो बात ही क्या जाए, जड़ अविवेकी मनुष्य को तो पता ही नहीं हो क्या रहा, कभी रोता है कभी चिल्लाता कभी बेचारा हंसता पागल विक्षिप्त बना संसार में घूम रहा, लेकिन जो ज्ञानवान है जिन्होंने शास्त्रों को समझा बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन किया महाराज, लेकिन वहां पर भी जिस क्षण महामाया का प्रभाव आ जाता है तो ना चाहते हुए भी वो महामाया उसकी बुद्धि का क्या कर लेती, हरण करती हुई दिखाई जाती महाराज। सारा शास्त्र ज्ञान वेद ज्ञान सब क्या हो जाता है, एक क्षण में सब निष्फल हो जाता है। एक तो ये बहुत सुंदर श्लोक सप्तश्लोकी भागवत में मुझे लगता है, और दूसरा जो है छठा श्लोक जो है सप्तश्लोकी भागवत का बहुत ही सुंदर जो है इसमें बताया गया है कि भगवान की शरण में आ जाने पर आपको मिलेगा क्या। नंबर एक तो रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, अगर परमेश्वर प्रसन्न हो जाए महाराज तो आपके संपूर्ण रोग शोक सबका क्या कर लेता है, हरण कर लेता है महाराज, है ना। तो देखिए पहले मेडिकल साइंस नहीं थी, बहुत बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक साधन नहीं थे, उस समय हमारे घर की माताएं जो हैं भगवान का नाम लेकर ही क्या कर लेती थी, अपने परिवार के सदस्यों को ठीक कर लेते, होता था कि नहीं होता था? देखो ये साधन थे पहले, क्योंकि सब माया रची हुई किसकी, परमेश्वर की, और परमेश्वर से आगे तो कोई नहीं है। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं महाराज, तो आपको ये अनुभव होगा। और वास्तविकता में आप देखो यहां पे आप शहर में रहते हैं, दुनिया भर की मेडिकल साइंस आपको प्राप्त है, और उसके बाद भी दुनिया भर के डेंगू ना जाने क्या क्या हो जाता है। और जंगल में रहने वाले महात्मा महाराज हैं, जंगल में, घनघोर जंगल में जहां सांप भी है, बिच्छू भी है, और मच्छर भी है, सब कुछ है, और उनकी आयु देखी जाती 100-100 साल, कुछ नहीं होता उनको, ना कोई इलाज कराने की जरूरत, कहां से जीवित रहते हैं। ये वो परमेश्वरी शक्ति है महाराज, जिसका हम अपने शरीर में होते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, अगर परम परमेश्वरी शक्ति तृप्त हो जाए तो महाराज आपके संपूर्ण रोग शोकों का विनाश कर देती है, अपहरण कर लेती है। रुष्टा तु कामान सकलान अविष्टान है, कहते हैं जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करे सब, अगर प्रभु प्रसन्न तो सब प्रसन्न, और भगवान अगर रुष्ट हो जाए महाराज तो उसका उससे सब कोई रुष्ट हो जाता है। तो भगवान को सीधा रखो, यही यहां पर जो है श्लोक में बताया गया, रुष्टा तो कामान सकला अविष्टान, यदि परमेश्वर वो माता भगवती रुष्ट हो जाए तो हमारे संपूर्ण सकल अभीष्ट कार्य ही क्या हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं महाराज। और जो सबसे बड़ी बात इस श्लोक में कही गई है, देखो कहते हैं तमाश्रितानाम न विपन्नराणाम, यानी जो माता भगवती की शरण में या परमेश्वर की शरण में आ जाता है, तमाश्रितानाम जो आपके आश्रय में आ जाता है उसको क्या प्राप्त होता है, कहते हैं विपन्नराणाम, वो जो है स्वयं संपूर्ण क्लेशों से क्या हो जाता है, हाँ, उसको कभी दुख नहीं होता। और दुख नहीं होता केवल इतना ही नहीं होता है, कहते एक और उसके संग विशेष जो है वस्तु जुड़ जाती, वो क्या जुड़ जाती, तमाश्रिता या श्रयताम प्रयान्ति, कहते जो आपकी शरण में आ गया है और जिसने आपकी शरणागति की अनुभूति कर ली है या आपकी कृपा प्राप्त कर ली है, या श्रयताम प्रयान्ति, वो दूसरे को शरण देने वाला बन जाता है, मतलब वो स्वयं तो दुखों से मुक्त हो ही जाता है, संग में वो दूसरों को भी शरण देने वाला बन जाता है। ये विशेषता है महाराज, देखिए भगवान की शरण में आ जाने पर आप तो निश्चिंत हो ही जाएंगे, विपन्न राणा, उसके जीवन में दुख न, प्रसादे सर्व दुखानाम भगवान गीता में कहते हैं, तो संपूर्ण दुखों से स्वयं तो वो मुक्त हो ही जाता परमेश्वर के आश्रय में रहने वाला, लेकिन उसके अंदर एक विशेषता और आ जाती है, वो ये हो जाती है कि वो स्वयं भी महाराज है ना, जैसे राजा का नौकर भी जो है क्या हो जाता है, वो भी राजा के बराबर अधिकार रखने लगता है महाराज। बड़े से बड़ा जो है अधिकारी भी राजा से मिलने जाएगा तो पहले किससे मिलना पड़ेगा, चौकीदार से मिलना पड़ेगा, उसके चपरासी से मिलना पड़ेगा, हैं? तो जब वो आज्ञा देगा तब आप अंदर जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के आश्रय में आ जाने वाला, परमेश्वरी शक्ति के आश्रय में आ जाने वाला दूसरे को शरण देने में सक्षम हो जाता है, ये सबसे बड़ी विशेषता, उसको फिर रोना नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसलिए आपको सुना रहे हैं, यदि आप भगवान के भक्त हैं, माता भगवती के भक्त हैं, और वास्तविकता में आपने उनका आश्रय ले लिया है, तो आप तो दुखी होंगे नहीं, लेकिन आप 10 लोगों को भी सुखी करने का क्या बनेंगे, सक्षम कारण बन जाएंगे महाराज, आप दूसरों को सुख देने वाले हो जाएंगे, अपने दुखों का रोना तो रहेगा ही नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब हम भगवान के शरणापन्न नहीं हैं, अभी हमने शरण ग्रहण नहीं किए, क्योंकि ये शास्त्र का क्या है, जिसको शास्त्र की भाषा में शास्त्र का डिमडिम घोष है, कहते हैं नाद डिमडिम घोष है हमारा, बिल्कुल अकाट्य सत्य है ये, कि जो परमेश्वर की शरण में आ जाता है वो दूसरे को भी शरण देने वाला, अपने दुखों से तो उसका कोई मतलब ही नहीं, बल्कि दूसरे के भी दुखों को हरण करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो ये सप्तश्लोकी दुर्गा से जो है आप 2 श्लोकों से ही माता भगवती महामाया को पूर्ण रूपेण जो है समझने में सक्षम हैं। यदि आप चाहें तो, और ना चाहें तो महाराज फिर तो पूरी दुर्गा सप्तशती भी कम पड़ जाएगी, है ना। फिर पूरी दुर्गा सप्तशती समाप्त करने पर भी माता भगवती आपको समझ में नहीं आने वाली हैं, तो केवल जो हमारे यहां नवरात्र हैं, नवरात्रियां, वास्तविकता में तो नवरात्रियों के जागरण की साधना है नवरात्र, है ना। जो हम लोग निद्रा देवी के वशीभूत, क्योंकि स्वयं जो है देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा कि ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, है ना। देखो ये ऐसी एक चीज है जिसके आगोश में आ जाने पर, जिसके आवेश में आ जाने पर क्या हुआ था, जब सुभद्रा को महाराज अर्जुन ने क्या सुनाया, चक्रव्यूह का भेदन, तो महाराज सुभद्रा को क्या आ गई, नींद आ गई। और जब भगवान भोलेनाथ ने माता भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाई तो माता भगवती को क्या आ गई, देखिए किसके प्रभाव के कारण, नींद के प्रभाव के कारण दोनों के हाथ से अमृत तत्व क्या हो गया, वंचित हो गया। इसी प्रकार से महाराज प्रेमपुरी मंडल में भी आकर आपको सत्संग में क्या आ जाती है, बोलिए निद्रा देवी की, ध्यान देना, निद्रा के आवेश में चले जाते हैं। उनसे पूछो महाराज जो निद्रा, पहले तो एक काका आते थे हमारे एक्यूप्रेशर वाले, वो तो बैठते ही सबसे पहले सो जाते थे, बड़ी उनकी टाइमिंग बड़ी बढ़िया थी महाराज, सत्संग शुरू हुआ और सो गए और सत्संग समाप्त होते ही अपने आप नींद खुल जाती थी उनकी, है ना। पहले बैठते थे, अभी अपनी आंखों से तो मैं सबको देख रहा हूं कौन कौन कहां बैठता था, तो काका थे हमारे एक्यूप्रेशर वाले, तो उनका एक स्वभाव था। एक सज्जन से मैंने पूछा यहां प्रेमपुरी, मैंने कहा महाराज आप आते सो जाते हो, वो नहीं थे दूसरे थे, बोले महाराज एक तो बड़ी शांति होती है और ऊपर से बढ़िया ठंडा भी होता है, हैं? अब तो एसी लग गया, पहले पंखे और ये हवा भी आती थी नेचुरल जो प्राकृतिक हवा थी महाराज, बोले बड़ी बड़ी ठंडी बढ़िया सुबह सुबह हवा आती है और घर से तो व्याकुल है ही है, वहां से छूट मिल जाती और शांति का वातावरण होता, ऐसे ही कुर्सी बढ़िया लगी हुई है इसलिए कुर्सी में बैठते ही क्या आ जाती। मैंने कहा हम लोग जो बोलते हैं वो भी सुनते ना, बोलते बहुत बढ़िया आप लोग हैं। तो ऐसा हमारा निद्रा देवी, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, तो ये जो महामाया का प्रभाव है, इसलिए नवरात्रि कहा गया, नौ दिवस नहीं कहा गया, क्या कहा गया, हाँ नौ दिन कठोर साधना, इसीलिए व्रत हुए, जिससे जो है एक तो जो हमारा वैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे कि हमारा शरीर जो है मौसम परिवर्तन के, ये चारों हैं, ये चारों नवरात्र जो है कैसे हैं, मौसम परिवर्तन के समय होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी व्रत जो है क्या, और हल्का भोजन जो है आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। नंबर एक तो ये सांसारिक जो है क्रिया हो गई। नंबर दो, जो हमारी वास्तविकता में साधना का जो प्रतीक है कि जो हमारा ये निद्रा का जो स्वरूप है, जिसके कारण हम अपने आए हुए अमृत में जो सोवत है सो खोवत है, तो रात्रि का जो ये हम सुंदर समय खो देते हैं। स्वयं कबीरदास ने कहा हीरा जन्म अमोल था, है तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। तो धीरे धीरे गुड़ा केश अर्जुन, निद्राजित अर्जुन हमारे यहां गीता में हमारा है ना। तो नवरात्रियां बनाई गई जिससे हम नवरात्रि जागरण कम से कम निद्रा देवी की गोद में जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने मनुष्य जीवन के क्षणों का क्या कर सकें। तो ये अभ्यास तो चार बार जब आप साल में करेंगे तो हमारा निश्चित है कि पूरे साल आपका क्रम जो है वो बना रहेगा। तो इसलिए नवरात्रियां बनाई गई है ना देवी की उपासना के लिए। बहुत से लोगों ने तंत्र साधना का उसको साधन मान लिया कि रात्रि में जो है शमशान जगाओ, फलाना करो, कोई बकरा काट रहा, कोई मुर्गा काट रहा, कोई कुछ काट रहा, कुछ तामसी साधनाएं प्रारंभ हो गई, लोग माता के नाम पर सिद्धियां प्राप्त करने लगे। लेकिन हम ये भूल गए कि माता साधारण सिद्धियां देने के लिए नहीं है, वो तो महाराज असाधारण सिद्धि के लिए देने के लिए है, जो जीवन मृत्यु से हमारा हमेशा हमेशा के लिए जो है, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है हमेशा हमेशा के लिए उसको उससे उद्धार करने के लिए माता का स्वरूप उपासना किया जाता है। तो वास्तविकता में ये नवरात्रियां, नवरात्र में जो हमारी निद्रा देवी का हमारे जीवन में प्रभाव था उसको किसके लिए, समाप्त करने के लिए, कि इस निद्रा के आवेश से हम क्या आ जाएं, बाहर आ जाएं, क्योंकि ये निद्रा अक्सर हमारे जीवन से सांसारिक है हमारे संसार में भी विद्यार्थी को जो है आचार्य लोग सबसे पहले सुखार्थीन कुतो विद्या, सुख भोग लो या विद्या प्राप्त कर लो, क्योंकि विद्या प्राप्त करने वाला सुख भोगी नहीं हो सकता, और सुखार्थीन कुतो विद्या, तो सुख भोगने वाला चाहे कि मैं विद्यावान बन जाऊं, संभव नहीं। इसी प्रकार से महाराज, यदि आप इस संसार में आकर मनुष्य जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आलस्य प्रमाद को भगाना पड़ेगा, और इसीलिए नवरात्र की साधना नवरात्रियां बनाई गई। तो नवरात्र जो है जाग करके, जागरण करके, जबरदस्ती तो नहीं जागना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का आजकल का जो जीवन शैली, जो हमारे जीने का तरीका है, वो इतना विचित्र हो चुका है कि यदि आप जागेंगे तो उसका परिणाम होगा मानसिक विक्षिप्तता। लेकिन ज्यों ज्यों आप साधक बन जाते हैं, जब आप अपनी परम शक्ति से जुड़ जाते हैं, यानी अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं, तब फिर कम निद्रा आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती। हाँ, ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। जब आप ना चाहते हुए निद्रा का परित्याग, नींद आ रही है मगर हम जागने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। निद्रा को त्यागना, शनय शनय साधना में निद्रा अपने आप स्वतः त्यक्त हो जाती है ना। साधना करने पर त्यागना नहीं पड़ता, निद्रा को स्वतः अपनी प्रसन्नता से ही वो विदा हो जाती है और वो निद्रा जित कहलाता हमारा। फिर निद्रा के ऊपर उसको क्या प्राप्त हो जाती है, हाँ, जब वो चाहता है तब वो योग निद्रा में विश्राम करता है। साधक किस में लेटता है, हाँ, योग निद्रा में, और साधारण निद्रा में महाराज बहुत अंतर है। भगवान विष्णु चिर योग निद्रा में शयन करते हैं ना, भगवान हमारी आपकी तरह जड़ निद्रा में शयन नहीं करते, जिसको हम लोग सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति में हम क्या हो जाते हैं, जड़त्व को प्राप्त हो जाते हैं महाराज, हमको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है ना। देखो लोग कहते हैं मृत्यु, आप लोग मृत्यु के नाम से डरते हैं, और इसका रिहर्सल तो हम लोग रोज एक बार 24 घंटे में करते हैं 24 घंटे में एक बार आप डेढ़ घंटे के लिए मरते ही मरते हो, ना चाहो तो भी। ये बात अलग है, धौंकनी चल रही है, ये सांस चल रही है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये डेढ़ घंटे की सुसुप्ति ना हो तो आपका जीवन ही व्यतीत हो जाएगा, व्यतीत हो जाओगे। डेढ़ घंटे की मस्तिष्क की पूर्ण शांति अति आवश्यक है, तब ये मस्तिष्क के जो सेल्स हैं वो फिर 24 घंटे क्या करते हैं, सुचारू रूप से कार्य करते हैं। सुसुप्ति डेढ़ घंटे से ज्यादा नहीं होती, एक डेढ़ घंटे की नींद होती है, बाकी फिर स्वप्नावस्था, आप तरह तरह के विचारों में खोए रहते हैं, और उसको आप क्या कहते हैं, मैंने क्या देखा, स्वप्न। स्वप्नावस्था अर्धनिद्रा की जो अवस्था होती है ना, आदमी सोता है और ना जागता है, और जागने में तो आप जागृत अवस्था में ही है। तो डेढ़ घंटे की जो सुसुप्ति अवस्था होती है, जिसमें आपको कुछ भी होश नहीं रहता कि आप कहां लेटे हो, आपका मकान दुकान क्या, आपका खजाना क्या, आपके पास संपदा क्या, आप कौन हो, स्त्री हो पुरुष हो, आपका मकान है या नहीं है, आपका शरीर है या नहीं, आपको अपने शरीर के अंगों तक का होश नहीं रहता, मेरा हाथ किधर है, देखा होगा ना आपने, प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में आपका हाथ दबा है, आप उसी हाथ को दबाए हुए लेटे हैं, और जब अर्ध निद्रा की अवस्था में आए तो आपका हाथ क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है महाराज, चेतना उसकी चली जाती, तब आपको याद आता है कि मेरा हाथ क्या हो गया, लेकिन डेढ़ घंटे तक आपको पता नहीं था कि मेरा हाथ सुन्न हो गया। वो जो अवस्था है जड़ अवस्था कहलाती है, लेकिन जो साधक है, जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं या परमेश्वर हैं, वो महाराज कैसी, योग निद्रा है। योग निद्रा एक अलग चीज है, और ये मूढ़ निद्रा जो प्रगाढ़ निद्रा है ना, ये समाधि में, और जो हमारी जो ये सुसुप्ति की अवस्था है, इसमें अंतर है ना। समाधि में जो है वो आनंद है, और प्रगाढ़ निद्रा में मूढ़ता है, तो मूढ़ता में हम सब कुछ अपने स्वरूप को भी भूल जाते हैं। तो स्वरूप स्वरूपावस्था में स्थित होने पर परम चैतन्यता का बोध होता हमारा। तो ऐसा जो माता भगवती का जो स्वरूप है नवरात्रों का, कि नवरात्रियों तक पूर्ण रूपेण एक साधक की तरह हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि शनय शनय इस मनुष्य जीवन में स्वस्थ रहते हुए निद्रा के ऊपर क्या प्राप्त कर लें, क्योंकि ये सब हमारे नियंत्रण में होना चाहिए हमारा, है ना। सुख दुख, मृत्यु जन्म मृत्यु, और आपका ये निद्रा सोना जागना, आहार विहार है ना, भूख प्यास जिसको कहते हैं, सब हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इंद्रिय जित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति इंद्रिय जित होता है और वही परमेश्वर को प्राप्त करने के योग्य माना जाता है। तो नौ दिनों तक माता के दो नौ रूप, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातृति षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चा अष्टमम नवमम सिद्धदात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। ये नौ दुर्गाएं हैं हमारे यहां और नौ स्वरूपों का मैं आपको वर्णन करके सुनाता हूं और अपने अंतःकरण में जो है आप हर चित्र का आनंद लें मैं ये चाहता हूं। तो पहली है शैलपुत्री जो स्वयं माता भगवती पार्वती हिमवान की पुत्री हैं, श्याम वर्णा है। माता भगवती का वर्ण कॉम्प्लेक्शन जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ण कैसा है? श्याम वर्णा, दो भुजाधारणी, वृषभ वाहना है जो पति का वाहन है, वही माता का वाहन है और हरे रंग का वस्त्र है। माता का वस्त्र कैसा है आज का? प्रथमम शैलपुत्री, प्रथम दिन का वस्त्र कैसा है? हरे रंग का, लाल रंग का नहीं है, हाँ ये ध्यान रखना। ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन की माता है ब्रह्मचारिणी, वाहन रहित ब्रह्मचारिणी है इसलिए उनका कोई वाहन नहीं है। गौर वर्णा है, उनका रंग कैसा है? गौर वर्ण है महाराज, और ऊपर से नीचे तक श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए, हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला, दो भुजाओं को धारण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन की माता का स्वरूप है। उसके बाद है माता चंद्रघंटा, श्वेत वर्णा, सिंहवाहिनी, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जो माता प्रकट हुई थी उन्हीं को जो है चंद्रघंटा कहा जाता है। तो श्वेत वर्णा है, सिंहवाहिनी है, लाल वस्त्र को धारण करने वाली है, अष्टभुजाधारिणी है और घंटा जो है उनका मुख्य जो हाथों में घंटा है, नाद है, जो विजय नाद करने वाला घंटा है उसको धारण करने के कारण ही उनको चंद्रघंटा कहा गया। तो ये माता के तृतीय स्वरूप का वर्णन है। उसके बाद माता का कूष्मांडा रूप है हमारा चतुर्थ दिन का, श्वेत वर्णा, बिल्कुल सफेद भव्य माता जी का रूप और लाल वस्त्र नहीं है, माता के गुलाबी वस्त्र हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है, एक गुलाबी रंग है और एक लाल रंग है। कूष्मांडा माता का रंग है गुलाबी, अष्टभुजाधारणी, सिंहवाहिनी ही महाराज कूष्मांडा है। उसके बाद है स्कंद माता, स्कंद माता जो है जब माता भगवती पार्वती ने जो है सुंदर से पुत्र जो है तारकासुर का वध करने के लिए स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी को जन्म दिया तो स्कंद माता कहलाई, ठीक वही शैलपुत्री ही श्याम वर्णा, चतुर्भुजाधारणी, सिंहवाहिनी और पीत वस्त्र, पीले वस्त्र हैं महाराज माता के इस स्वरूप में। उसके बाद है माता कात्यायनी, जो कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने पर कात्यायन ऋषि प्रसन्न हो गए तो उन्होंने जगत जननी नहीं कहा, ऋषि महाराज वृद्ध थे और एक कुमारी कन्या के रूप में माता ने जन्म लिया तो उन्होंने कहा तुम मेरी पुत्री हो, माता ने नमस्कार किया आप मेरे पिता हैं और वहां पर पिता और पुत्री का रिश्ता स्थापित हुआ। तो कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण माता को क्या कहते हैं? कात्यायनी। तो महाराज कात्यायनी का स्वरूप है गौर वर्णा, सिंहवाहिनी, चार भुजा और लाल वस्त्र, ये माता कात्यायनी का रूप है। सप्तमम काल राति, सातवें दिन महाराज माता भगवती का भयंकर रूप, जो स्वयं जो है क्या है किसकी? भगवान भोलेनाथ की शक्ति मानी जाती है महाराज, काल की जो शक्ति मानी जाती है और जो हमारी उपासना में जो वेदांत साधना में काली का स्वरूप है वो काली शब्द नहीं है केवल, काल रात्रि शब्द है। माता का नाम क्या है? हाँ, काल की भी जो रात्रि कर दे उसको क्या बोलते हैं? काली। और इसीलिए महाराज अगर साधारण मृत्यु अकाल मृत्यु को देखा जाए तो काली माता के स्वरूप का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं। उनका वर्ण कैसा है? भुजंग काला महाराज, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं जेट ब्लैक, एकदम बिल्कुल विशुद्ध काला स्वरूप मृत्यु का जो रूप होता है। गर्धप माता का वाहन है, दो ही माता हमारे यहां ऐसी हैं जिनको गर्धप दिया गया वाहन के रूप में, माता शीतला और दूसरी महाराज जो है माता भवानी। कालरात्रि चतुर्भुजाधारणी, चारों दिशाओं में उनका राज्य है महाराज, कोई बचा नहीं काल से। तो जिसके ऊपर आती है महाराज काली यानी काल आता है वो क्या बन जाता है? अरे गर्दभ बन जाता है कि नहीं बन जाता? काल रात्रि सातवें दिन और महाराज आठवें दिन परम सिद्धि की प्राप्ति होती है माता महागौरी, शैलपुत्री ही महागौरी, साधना करके श्याम वर्णा जो थी माता शैलपुत्री वो महागौरा में परिणित हो गई, अज्ञान ज्ञान में परिणित हो गया। ये है महाराज हमारे यहां नवरात्र की साधना। अज्ञान किस में परिणित हो गया? हाँ, तो जो वृषवाहना थी महाराज जब वो महागौरी स्वरूप को प्राप्त हुई और जिसलिए वही गौरी का ही स्वरूप जो है पूरे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा घरों के ऊपर एक डंडे में लोटा लोटे में जो है एक सुंदर सी जो है चुनरी टाइप का कपड़ा और एक माला जो है लटकाया जाता है वो महागौरी का ही क्या है हाँ जो उनको संकेत है हाँ गुड़ी उसको बोल देते हैं गौरी शब्द है वैसे तो गौरी का हमने वो हम लोगों की आदत है लक्ष्मण दास को लच्छू कहना हमारी क्या है तो गौरी का हमने क्या कर दिया गुड़ी कर दिया ले अच्छी खासी माता को भी गुड़िया बना दिया ये है हम लोग कहते हैं चमत्कार हमसे बड़ा कोई चमत्कार करेगा माता को भी गुड़िया बना दें सबके ऊपर माता राज्य करती है हम माता के ऊपर भी क्या करते हैं तो अष्टम दिवस यानी आठवें दिन श्वेत वर्णा और वृषवाहिनी चतुर्भुजा और श्वेत वस्त्र माता का वस्त्र अब कैसा हो गया हरे से श्वेत हो गया महाराज राजस से परम सात्विकता को प्राप्त हो गई तो महागौरी और यही महागौरी जब महाराज नवे दिन में प्रवेश हुई तो वो साधक की साधना पूर्ण हुई सिद्धदात्री बनी महाराज तो गौरवर्णा लाल वस्त्र चतुर्भुजा कोई वाहन नहीं कमलासना कमल के ऊपर विराजमान सिद्धदात्री परम सिद्धि को देने वाली आवागमन से मुक्त करने वाली जो परम सिद्धि है जो बंदर का नाच है हमेशा हमेशा के लिए ये नवरात्र हमारा जो है हम समाप्त कर दे यही हम अंतिम दिन माता से क्या मांगते हैं प्रार्थना करके माता भवानी से यही मांगते हैं जिस प्रकार से माता आपने शैल पुत्री से महागौरा रूप प्राप्त किया उसी प्रकार से हम अज्ञानी जीव भी अपने अविवेक को त्याग कर परम विवेक को क्या हो जाएं प्राप्त हो जाएं इसी को सिद्धदात्री की उपासना कहते हैं। तो ये नौ दुर्गाएं हैं नौ दिन एक एक माता की उपासना करके आप भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समय ने जो है हाथ हिला दिया है और हम भी अपना प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। सायंकाल रामचरितमानस के द्वारा आनंद लीजिए, प्रातःकाल जो है श्रीमद् भागवत कल पुनः आज पहला दिन था हमारा संवत्सर का इसलिए माता भगवती जगत जननी जिनका ये सब खेल है उनको याद करना परमावश्यक था तो इसलिए माता का आशीर्वाद लेकर हम अपना साल प्रारंभ करें क्योंकि उन्हीं का ही रचा हुआ सब खेल है। तो बारंबार जगत जननी माता भगवती को नमस्कार करते हुए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।